ओम शांति। हम सबके बीच हमारी परम आदरणीय जयंती दीदी पहुंच चुके हैं। आप सब उनका करतल ध्वनि के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आप इंदौर जोन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं। 50 वर्षों से बाबा के इस बेहद घर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इंदौर में कालानी नगर सेवा केंद्र की आप मुख्य संचालिका हैं। ज्ञान योग में आपकी बहुत ही गहन रुचि रही है शुरू से और ज्ञान मंथन करने की आपके अंदर बहुत सुंदर कला है। सहज सरल स्वभाव होने के नाते आप बहुत रमणीय भी और गंभीर भी हैं। जुरिस्ट विंग की आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। समय प्रति समय जोन के और स्थानों पर भी आप योग तपस्या भट्टी कराती हैं और आज के आपका क्लास का विषय है ज्ञान की पराकाष्ठा। अभी हम सुनेंगे आदरणीय जयंती दीदी।
ओम शांति। संसार में आज सर्वत्र इंसान जिस गति से चल रहा है, सभी अपने अपने हिसाब से अपने घर में बहुत अच्छे से चल रहे हैं, नौकरी धंधा भी अपने हिसाब की कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, कई अपना एम रखे हैं कि बहुत ऊंची पढ़ाई करेंगे और बहुत ऊंचा नाम कमाएंगे, बहुत पैसे भी कमाएंगे, बहुत कुछ आश भी रखे हैं, चल रहे हैं। और हम देखते हैं कि जिन्होंने जो भी आश रखी है उसके लिए वैसा पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें फल भी मिलता है। अच्छी पढ़ाई पढ़ करके कोई विदेश भी जाता है और अच्छी कमाई भी करके अपने घर परिवार को भी चलाता है। लेकिन जो लेकिन है, अगर सब कोई ठीक ठाक चल रहे हैं तो आज के संसार में लोग दुखी क्यों हैं, अशांत क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? और सभी पुकार रहे हैं उस प्रभु परमात्मा को कि आप ही आओ और आकर हमारे दुख हरो, हमें सुख का रास्ता बताओ, हमें कुछ ऐसी जगह दे दो जहां से हमको सुकून मिले, चैन मिले। तो हमने देखा कि संसार में सभी दूर कार्य भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मनुष्यों के अंदर वो चीज नहीं है जो वो प्राप्त करना चाहते। पढ़ा लिखा इंसान भी आज अपने आप को सही रीति से चला नहीं पाता है। लोग कहते भी हैं कि आप तो बड़े समझदार हो, फिर आपके पास ऐसी बातें क्यों? न घर परिवार को ठीक से संभाल पाते हैं और न ही अपने आप को सुख से भरपूर करके चला पाते हैं। हम सब भी इसी रीति से चलते आए हैं और फिर आखिर हमें वो रास्ता मिला। जब हमने पुकारा परमात्मा को तो परमात्मा हमारी पुकार सुनकर आए और हम सबको रास्ता बताया, रास्ता हमें मिला। और जो रास्ता मिला, ये रास्ता बहुत ही आसान है, लेकिन आसान होते हुए भी कठिन है। और वो कठिन क्यों है, वो समझने की बात है। और जिसने उस बात को समझ लिया वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। मैंने देखा है कि इस ज्ञान में चलते हुए बहुत ज्ञानी भी फेलियोर हैं और बहुत अनपढ़ भी पास हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान देने वाला जो है, सबसे पहले उसको पहचानना आवश्यक है। वो कौन है और वो हमें जो रास्ता बता रहा है वो रास्ता सही है कि गलत है, वो समझना जरूरी है। और जब वो बात हम समझ जाते हैं कि हमें बताने वाला हमारा वो पिता जिसे हमने जन्म जन्मांतर से पुकारा वो पिता है और वो हमारे लिए ही आया है और हमें ये बातें बता रहा है, जब ये बात समझ में आ जाता है, इस बात पर निश्चय हो जाता है, तो ही कदम आगे बढ़ता है। तो परमात्मा पिता संसार में आए, उन्होंने कोई मठपन स्थापन नहीं किया। परमात्मा ने आकर के एक ऐसा स्थान लिया, एक ऐसी जगह बनाई जिस जगह पर हर एक आ सकता है, और वो है विद्यालय। विद्यालय में जाति धर्म भाषा देश की कोई परहेज नहीं, ऊंच नीच की भी कोई परहेज नहीं। तो परमात्मा ने आकर के ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। मठपंथ होता तो वहां कोई एक ही प्रकार के व्यक्ति पहुंचते और वो एक ही प्रकार की बातों को लेकर चलते, लेकिन परमात्मा पिता चूंकि वो विश्व का मालिक है, इसीलिए वो सारे विश्व की बात सोचता है और सारे विश्व के कल्याण के लिए ही वो अपना कार्य करता है। तो इसलिए वो जब आए तो उन्होंने एक सुंदर विश्वविद्यालय की स्थापना की, और जो सचमुच विश्व के लिए ही विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, पूरे यूनिवर्स के लिए, सारे विश्व के लिए। यहाँ तेरा मेरा नाम की कोई बात नहीं। और जो उन्होंने बताया, परमात्मा पिता जब आए तो उन्होंने आकर के ये नहीं कहा कि तुम जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पत्ती चढ़ाओ, ऐसे याद करो, इधर पूरब की दिशा में करो, पश्चिम की दिशा में न करो, ये सब बातें उन्होंने नहीं कहा। परमात्मा पिता ने ये जरूर कहा मुझे याद करो, लेकिन मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, सबसे पहले उस बात पर विशेष ध्यान खिंचवाया। तो परमात्मा पिता ने जो बात कही, सबसे पहले सत्य बात कही कि तुम एक आत्मा हो, जो आज तक किसी ने नहीं बताया, कोई सत्संग में ये बातें नहीं होती कि तुम एक आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, और हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा है। सत्य बात बताया कि तुम जिसको मैं समझते हो ये तुम नहीं हो, और तुम्हारे इस मैं सोचने के कारण ही तुम दुखी हो, तुम अशांत हो, परेशान हो, तुम अपने इस आत्मा को जानो, ये बात कही। और उन्होंने विद्यालय में पढ़ाया, सबसे पहली पढ़ाई, पहला पाठ, तुम एक आत्मा हो। और ये पढ़ाई जिसने पढ़ ली, पढ़ाई पढ़ करके अनुभव कर लिया, अपने जीवन में उन बातों को धारण कर लिया, उसके जीवन में सुख शांति ऑटोमेटिक आने लगे। जो सिर्फ सुना और चला गया, दूसरे दिन भी आया, फिर सुना, फिर चला गया, परंतु महसूस नहीं किया, उसका चाल चलन वैसा ही रहा। तो ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई हमें माला माल करने वाला है, ये पढ़ाई हमें एक सन्मार्ग देता है, हमें एक दिशा देता है, और जहां से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कहते हैं क्वीन एलिजाबेथ का जो वजीर था, वो लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई किया और बहुत बड़ा पोजीशन प्राप्त किया, लेकिन वो जो पढ़ाई थी उसमें कोई रत्नों की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन ये जो पढ़ाई है जिसे हमारे बाबा शिव बाबा बहुत प्यारा बाबा पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाई हमें रत्नों की प्राप्ति करा रहे हैं। परमात्मा शिव बाबा हम सबको वो रतन दे रहा है आज, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, और ये रतन हमारे जीवन को भरपूर करता जा रहा है। हम सबको इस बात की अनुभूति हो रही है कि पहले जो हमारा जीवन था वो कैसा था, कितना उलझा हुआ था, हर बात में परेशान होते थे, हर जगह पर प्रश्न चिन्ह आता था, अब क्या होगा कैसे होगा। लेकिन जब से इस मार्ग पर चलने लगे तो वो सारे प्रश्न खत्म हो गए और हमको फिकर नाम की चीज नहीं रही, बेफिकर हो गए, निश्चिंत हो गए। इतना सहज पढ़ाई और इतनी प्राप्ति हमें शिव बाबा ने करा दिया और हम आज बन गए ईश्वरीय संतान। आत्मा का पाठ पक्का हुआ, हम ईश्वरीय संतान बने तो हमारे जीवन में जो धारणाएं आई वो सबसे दुनिया वालों के लिए कठिन है लेकिन हम सबके लिए आसान है। ईश्वरीय संतान की कभी कुदृष्टि नहीं हो सकती। ईश्वरीय संतान सदा ज्ञान दान करेगा, ईश्वरीय संतान कभी भी कोई कुकर्म नहीं कर सकता। दुनिया में जिस बात को बहुत कठिन समझते थे शिव बाबा ने उसको इतना आसान कर दिया कि तुम एक पिता के संतान हो, ब्रह्मामुख वंशावली भाई बहन हो, तुम्हारी दृष्टि वृत्ति शुद्ध होना चाहिए, बस इतना सहज तरीका बताया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। और आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सारे विद्यार्थी इतना आराम से इतना प्रेम से इस धारणा की बात को लेकर चल रहे हैं कि हम सभी बाबा के बच्चे भाई बहन हैं। दृष्टि शुद्ध हुआ तो वृत्ति भी परिवर्तन हो गया, वृत्ति में भी वो नारी पुरुष का रिश्ता खत्म हो गया। हम सबका एक ही रिश्ता है शिव बाबा से, वही हमारा सब कुछ है, चाहे उसे हम साजन कह ले चाहे उसे हम बच्चा कह ले, सारा रिश्ता उसी के साथ है और वो सारे रिश्तों से हमें अनुभव भी कराता है। हमें हर वक्त पर वो जैसे संकेत देता रहता है और वो संकेत भी उन्हीं को मिलता है जो सचमुच ईश्वरीय संतान हर वक्त उनकी याद में रहता है। कदम कदम पर संकेत मिलता है कि ये काम ठीक है और ये काम जो किया ये ठीक नहीं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कदम कदम पर अनुभव होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इतना आसान तरीका बताया, ज्ञान में चलते हैं तो उसकी पूरी जैसे एक जीवन में परिवर्तन आया। पहले ज्ञान में नहीं चलते थे, वो चाल चलन वो दिनचर्या, और जब ज्ञान में चलने लगे वो चाल चलन वो दिनचर्या टोटल चेंज हो गया। अनाप शनाप सोना करना खाना पीना जो करता था उसका वो सब कुछ बदल गया, सब कुछ नियमित हो गया, सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा। और हम अपने आप को क्या समझने लगे कि हम शिव बाबा के विद्यार्थी हैं और हम शिव बाबा के खिदमत में काम कर रहे हैं, खुदाई खिदमतगार हैं। सिर्फ शिव बाबा के ही नहीं, हम तो वर्ल्ड सर्वेंट हैं। आज कोई सर्वेंट होता है तो उसको सदा अपना मालिक याद रहता है और मालिक की सेवा याद रहती है। तो हम भी जो वर्ल्ड सर्वेंट है, हमें भी क्या याद रहता है? बाबा की सेवा और बाबा। चलते फिरते उठते बैठते बार बार चिंतन चलता है, आज इस प्रकार की सेवा किया जाए, आज इस तरह से लोगों को बताया जाए, आज इस प्रकार से फलानी जगह जाया जाए जहां ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हों को कुछ पता ही नहीं है। अर्थात हर पल वो सोच चलता रहता है। तो जब हम ज्ञान में चलने लगते हैं तो जीवन का परिवर्तन इतना हो जाता है कि कदम कदम पर हमें ये होश रहता है कि हमारा चाल चलन, उठना बैठना, बोलना करना, ये जैसे सबके लिए एक प्रेरणादायक हो। बाबा भी कहते हैं कि तुम्हारा चलन और चेहरा ही सेवा करेगा, और यही ज्ञान है। अगर इस तरह से हम चलते हैं, यही श्रेष्ठ मंजिल है कि हमारी बुद्धि और कहीं भी नहीं जाती, किसी भी चीज में आकर्षण नहीं। आकर्षण है तो एक शिव बाबा में है, क्योंकि हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं, हम खुदाई खिदमतगार हैं, हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। इसीलिए हमारा चलना बोलना करना, उठना बैठना, हर चीज ऐसा हो जो किसी को प्रेरणा देने वाला हो। हम बाबा के बच्चे अगर कलियुगी जैसे चाल चलन चलते हैं तो जैसे बाबा की बदनामी होती है। लोग कहेंगे कि ये बाबा के बच्चे ये ओम शांति में जाते हैं और देखो कैसे चलते कैसे बोलते। तो हमारे हर बात में परिवर्तन आता जा रहा है। और शिव बाबा आया किस लिए है? नई दुनिया की स्थापना करने। नई दुनिया माना कोई अलग से ग्लोब नहीं बना रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना के लिए उसको सबसे पहले नई दुनिया में रहने वालों को ठीक करना होगा जो बिगड़ गए हैं पूरी तरह से। दुनिया तो वही है, दुनिया कोई गई नहीं है कहीं, दुनिया वही है, लेकिन दुनिया में रहने वाले जो हैं उनके विचार आचार में परिवर्तन के कारण संसार में इतना परिवर्तन हो गया। आज उनके ही विचार आचार अगर वैसा ही हो जाए तो फिर से दुनिया में वही बातें आएंगी जो थी। तो परमात्मा जो हमारे मन की प्रवृत्ति इतना चेंज हो चुका है उसको ही बदल रहा है ज्ञान के द्वारा, भक्ति की अंश मात्र भी नहीं, समझ। हर बात में बाबा समझ दे रहा है, शिक्षा दे रहा है कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम्हें इतने बजे उठना है, इतने बजे उठ करके तुमको शिव बाबा को याद करना है। क्यों याद करना है? जिससे तुम्हारे अंदर जो विषय विकार, ये जो गंदगी है, ये साफ हो जाए। अर्थात सबसे पहले योग स्नान करना है, सबसे पहले पहले, उसके बाद फिर ज्ञान स्नान करो, फिर क्लास करो, मुरली सुनो, ज्ञान की बरसात अपने ऊपर लो। तो एक एक बात बाबा बता रहे हैं जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, जो पहले था ही नहीं, इसको कभी हमने सोचा भी नहीं और कभी किया ही नहीं। हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि सवेरे सवेरे 4 बजे 3 बजे उठना है, लेकिन जैसे ही बाबा में निश्चय होता है तो लोग 8 बजे 10 बजे उठने वाला भी 4 बजे उठना शुरू कर देता है। और जब वो उठने लगता है उसको कुछ प्राप्ति होने लगती है, परिवर्तन आता है, तो उसको मजा आ जाता है। हम आप सभी अनुभव करते हैं इस बात को कि जैसे हम सवेरे उठते हैं और कोई कोई दिन न उठे, सोते ही रहे, और फिर उठे हम 8 बजे 10 बजे, अनुभव करो कैसा लगता है। इतना परिवर्तन जो हम जन्म जन्मांतर से करते आए उसे बाबा के ज्ञान ने परिवर्तन कर दिया, जीवन का परिवर्तन हो गया। और जब इस प्रकार का परिवर्तन हमारा उठना बैठना बोलना करना सब बातों में आता जाता है तो हमारे अंदर वो दिव्यताएं आने लगती है। शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना में देवी देवताओं को ही तो लाएंगे ना सबसे पहले। इंसान जरूर जाएगा लेकिन वो इंसान देवताएं होंगे, दैवी गुणों से संपन्न होंगे। इंसान आज भी है लेकिन आज का इंसान हैवान हो चुका है, उसके अंदर की प्रवृत्ति आसुरी हो चुकी है। और शिव बाबा हमारे अंदर की प्रवृत्ति को दैवी बना रहे हैं, हमारे अंदर देवत्व की जागृति कर रहे हैं। और हमारे आचरण में परिवर्तन दूसरों को प्रेरित करता है। समझने वाले समझ जाते हैं कि हाँ ऐसा जीवन जरूर बनाना है। खाना पीना रहना करना हर एक चीज बदलने लगता है। तो ज्ञान जो हमें सिखाता है कि तुम्हें किस रीति से चलना है, अगर हम इस रीति से चलते रहे, श्रीमद् प्रमाण चलते रहे जिससे हमारा जीवन अनमोल बनता जा रहा है, चलते चलते अगर कोई माया आ जाती है, माया के वश में हो जाते हैं, माया अर्थात पुरानी दुनिया की, कोई संगी साथी ऐसा मिल गया जो हमें वापस कलयुग उस युग में ले गया। हम आज जब यहां चलने लगे तो बाबा ने हमें बताया तुम संगम युग में हो, अभी तुम्हारा युग परिवर्तन हो चुका है, तुम कलयुगी नहीं हो, तुम्हारा लंगर उठ चुका है, तुम दुखी थे अशांत थे परेशान थे वो खत्म हो गया है, आज तुम नई दुनिया की ओर जा रहे हो, तुम्हारा लंगर उठ गया है। आज तुम न दुखी हो न सुखी हो, पर वो दुख को याद नहीं करो, उस दुख के दिनों को याद करके महसूस कर लो कि क्या करते थे जिससे दुखी थे, उसे सीख लो, लेकिन अपने जीवन में ये परिवर्तन लाओ जिससे तुम्हें फिर से वो रास्ता मिल जाए और जहां जाकर के तुम अपने आप को सुखी संपन्न महसूस करो। तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता जा रहा है। अब ये जो ज्ञान ये हमारे जीवन को कितना पलट रहा है ये हमें समझना होगा। और हम इस बात को अच्छी तरह से समझें कि जो ज्ञान मिला वो ज्ञान हमारे जीवन में कितना गया। आप सोचो सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा स्वभाव हमारा संस्कार, हमारा संस्कार तो कलयुगी संस्कार, खाना पीना ऐशो आराम करना मिलना जुलना बातचीत घूमना फिरना जो कुछ था, ज्ञान में आने के बाद सब कुछ बदल गया है। तो वही चीजें घूमते फिरते भी है बातचीत भी करते हैं लेकिन हर चीज में ज्ञान आ चुका है, कंट्रोल हो गया है, पहले अनकंट्रोल था, कभी भी खाते थे कभी भी सोते थे कभी भी उठते थे, लेकिन अब हर बात में नहीं, इसके बाद नहीं, इसके बाद करेंगे तो ये आसुरी गुण वाला हो जाएगा और इसमें आसुरी प्रभाव पड़ेगा और हमारा जीवन आसुरी हो जाएगा। अर्थात आज अगर हम रात को बहुत रात तक खाते पीते हंसी मजाक करते तो सुबह अमृत वेला नहीं होगा, अमृत वेला नहीं होगा बाबा की याद नहीं होगी, बाबा की याद नहीं है अर्थात कोई और की याद होगी, कोई और देहधारी की याद होगी और वो देहधारी हमें किधर की तरफ ले जाएगा, कलयुग की तरफ। लेकिन जब हम उठकर बाबा को याद करते, बाबा की याद में रहते, तो हमारा दिन अलग होता है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते उसमें परमात्मा की शक्ति जरूर होती है, क्योंकि वो साथ रहता है। और जब से हम ज्ञान में चलना शुरू करते वो हमारा साथ देना शुरू करता है। कहते हैं ना, पांडव के साथ पांडव पति अर्थात कृष्ण, कृष्ण को वहां दुनिया में भगवान समझते हैं, तो भगवान साथ में था। और आज हम भी महसूस करते हैं कि वो जो भगवान जिसके लिए वो महाभारत बनाया हुआ है, वो जो कहानी सुनते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप में इस समय हमारे साथ है। और बाबा भी हम बच्चों को ये कहता है कि बच्चे कुछ भी हो जाए तुम मुझे याद करो। कोई ऐसी बातें हो जाए तुम्हारे सामने या ऐसी समस्या, ऐसी परेशानी हो जाए, तुम याद करो, शिव बाबा खुदा दोस्त आ जाओ, मैं आ जाऊंगा। और वो अपना ये वायदा निभाता है। आप सबको भी महसूस होगा अगर आपने इस बात को उस समय ध्यान किया होगा, आपने भी महसूस किया होगा कि कैसे वो सामने आ जाता है और कैसे हमारी रक्षा हो जाती है। इस विश्वविद्यालय में बाबा के कितने बच्चे कितने अनुभव सुनाते हैं, और वो सब अनुभव को सुनो तो दिन रात पूरा हो जाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। तरह तरह के अनुभव है, कभी कोई समस्या आती है, कभी कोई विघ्न आता है, कभी कोई और बातें आती है, लेकिन हर बात में बाबा साथ में होता है तो हम क्रॉस हो जाते हैं। अभी हम एक क्लास सुन रहे थे कि यूक्रेन में सेंटर था जहां बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वहां पर मकान मालिक ने उनको कहा कि तुम ये खाली कर दो। बहुत अच्छा सेंटर जमा जमाया, अच्छा चलने वाला मकान मालिक, किराए का था वो मकान मालिक ने कहा इसको खाली करो, हमें ये चाहिए, हमको आवश्यकता है। बहुत परेशान हो गए सेंटर में सब, बहुत जल्दी उन लोगों ने किया तो जल्दी जल्दी ढूंढा, किया, मिल गया। मिल करके वो जहां पहले था वहां से उनको शहर के बीच में आना पड़ा, वहां मिला, वहां सेंटर स्थापित हुआ। अब एक जगह पर बसी बसाई चीज दूसरी जगह जाती है तो बहनों को समस्या तो होती है कि कहां से लोग आएंगे, कैसे आएंगे, इतना दूर कैसे आएंगे। लेकिन अब जब शहर के बीच में आया तो जब लड़ाई छिड़ी ना तो सबसे पहले बॉम्ब उसी मकान पर गिरा। कौन सा मकान? जिसको मकान मालिक ने खाली कराया था, सबसे पहले वहां। बाबा हमारा मददगार। और शहर के बीच में आया तो वहां बहुत अच्छे से चलने लगा क्योंकि शहर के लोग सब जाग उठे। तो बाबा कदम कदम पर साथ देता है। और हम सब उस समय किसको याद करते? बाबा ये क्या हो गया, अब कैसे होगा? तो बाबा बताते हैं ऐसे होता है, मैं हूं ना साथ में। तो इस तरह से वो साथ में सदा रहता है और हमें कदम कदम पर अनुभव कराता है कि कितना वो हम बच्चों को मदद देता है और कितना वो कार्य करता है। आज हम देखते हैं कि बाबा के अनेक बच्चे अनेक परेशानी में रहते हैं, कईयों की परेशानी बाबा की याद में सफल हो जाता है। मुझे याद है एक सेंटर पर मैं गई तो मुझे मालूम पड़ा कि यहां पर कुछ ऐसी बातें हो गई जो चमत्कार हो गया। क्या हुआ था भाई, मुझे तो मालूम नहीं था। तो मैं वहां गई तो बोले कि जिसके घर में गीता पाठशाला चलती थी उस घर में कहा कि इसके बच्चे की शादी होने वाली थी। मैं काफी दिन बाद गई थी वहां, कुछ ऐसे कारण हो गए थे तो जाना नहीं हुआ था। जब पहुंचे तो बोले इसके बच्चे की शादी होने वाली थी और जब शादी होने वाली थी तो इन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया और इंतजाम करने के बाद मालूम पड़ा कि जो उनको मिलना था ऑफिस से पैसा, वो पैसा अभी नहीं मिलेगा, शायद एक दो मास बाद मिलेगा। अब इन्होंने अपना सब काम पूरा कर लिया, कार्ड भी छप गए, निमंत्रण पत्र सब चारों ओर चला गया, सब लोग घर के मेहमान आने लग गए। तो वो बहन जो है बहुत परेशान हो गई, तो उसने क्या किया, शिव बाबा का एक छोटा सा स्थान अपने घर के अंदर बनाया हुआ था, शिव बाबा के चित्र के सामने जाकर बैठ गई और बैठी रही वहां। सुबह 3 बजे से जो गई वो उठी नहीं, वहां बैठी रही। मेहमान आ चुके थे घर में, मेहमान आकर पूछने लगे नाश्ता क्या बनाया जाए, कुछ नहीं बोली। उन लोगों ने देखा कोई विशेष चीज तो है ही नहीं, जो था उसमें कुछ कुछ काम किया। उसके बाद देखा तो अनाज भी बहुत कम था, मेहमान आ रहे हैं घर में क्योंकि 3 दिन बाद शादी है, तो मेहमान उन लोग से जो बनता है वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परेशान वो भी हो रहे हैं। दोपहर हो गया, अभी खाना कुछ विशेष बना नहीं था, जो थोड़ा मोड़ा था उसमें बच्चों को खिला दिया, लेकिन बड़े तो भूखे थे और बहन जो है वो उठी नहीं। उनका पति ऑफिस गया हुआ था और कोई नहीं, मेहमान लोग आपस में ही चर्चा कर रहे हैं, खुसुर पुसुर कर रहे हैं और जो उनको मिल रहा है उससे वो काम चला रहे हैं, लेकिन अभी खाना नहीं बना था, कुछ नहीं हुआ था, वो भी परेशान हो रहा। बहन जो है बाबा के चित्र के सामने बैठी हुई है। दोपहर का समय हुआ, दोपहर के ठीक 12 बजे एक बहुत बड़ा ट्रक उनके घर के आगे सामने खड़ा हुआ और वो ट्रक से ड्राइवर उतर के बोलता है कि ये घर आपका है, एक पर्ची दिखा के। तो बोले हाँ ये घर आपका है, साहब का नाम भी बताया कि ये साहब ने सामान भेजा है, तो ये सामान आप रख लो। तो सामान क्या भेजा, जो भी अनाज पानी और उसमें सब प्रकार के सामान है, यहाँ तक कि उनके कपड़े लत्ते, शादी के कपड़े लत्ते सब कुछ उस ट्रक में भरकर आया। बोले साहब ने भेजा है, तो वो सोची कि शायद इनको पैसे मिल गए और इन्होंने जल्दी से सब सामान बुक करा के और भेज दिया होगा, रखवा लिया। ट्रक तो निकल गई सब सामान खाली करके। उसके बाद वो आए, साहब आए ऑफिस से, दोपहर का समय था, वो आते थे दोपहर को। तो दोपहर आए तो पूछा, सब सामान पहले देखा, पूछा तो नहीं, सामान देखा, पूछा ये क्या है, इतना सामान कहाँ से आया। तो बोले आपने ही तो भेजा है। इधर जैसे सामान पहुंचा, बहन तो बैठी थी बाबा के सामने, मेहमानों ने सामान सब खोल दिया, घी तेल और आटा दाल चावल जो भी था सब निकाल निकाल के उन लोग अपना काम शुरू कर दिए, खाना बनाना शुरू कर दिए। बहन बैठी थी, बहन को मालूम नहीं। जब ये आए ना, साहब आए, जब इधर बातचीत होने लगी सामान किसने भेजा है, तब बहन उठी और बोली मुझे तो मालूम नहीं, इन लोगों ने रखवा लिया होगा। और तो बोले कि मैंने तो कुछ भी नहीं भिजवाया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो ऑफिस गया और आ रहा हूँ। तो बोले फिर ये सामान किसका, और वो जो पर्ची दिखा, ये देखो पर्ची है, पर्ची में आपका नाम लिखा हुआ है और आपने सामान भिजवाया। बोले कि जरूर कोई गलती हुई होगी, किसी और का सामान है और हमने रखवा लिया और यूज भी कर लिया, अब क्या होगा। सोच सोच के परेशान हो गए, पर मेहमानों ने कहा अभी तो होने दो, अभी तो अपना काम चलने दो, बाद में आप लोग निपटा लेना जो भी आपकी समस्या है। काम शुरू हो गया, शादी भी हो गई, सब सामान आ गया था। सामान के साथ आप सोचो, दूल्हे का सामान, कपड़े लत्ते जेवर जो भी है सब कुछ, सब काम हो गया। उसके बाद उन लोग इंतजार करने लगे, कोई आएगा बोलेगा मेरा सामान है, आपने ये किया वो किया, पर कोई भी नहीं आया। मैं जिस दिन गई थी उस दिन बोले कि दीदी 2 महीना हो गया है, अभी तक कोई भी नहीं आया, काम हो गया हमारा। तो मैंने कहा अब कोई आएगा भी नहीं, ये तो बाबा ने करवा दिया, आप बाबा के पास बैठी थी ना, इसीलिए ये आपका काम पूर्ण हो गया। अब आप सोचो नहीं, अब आप खुश हो जाओ, आपका घर का काम पूरा हो गया और काम निपट गया, क्योंकि आप इतना तपस्या की ना, इसीलिए बाबा ने आपका काम कर दिया। और बाबा हर पल पर बच्चों का मदद करता है, और सचमुच वो पता ही नहीं चला, अंत तक पता नहीं चला कि किसका सामान था, किसने भेजा। तो बाबा इस प्रकार से बच्चों की मदद करते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा मदद बाबा करते हैं। और वो अगर हम बार बार अनुभव करते रहें कि किस प्रकार की मदद हमें बाबा से मिल रही है, तो हमको कितनी खुशी मिलेगी। और ये जो चीज है, जितना जितना हम इस ज्ञान के अंदर आते जा रहे हैं, हमें हर चीज मिलती जा रही है, परंतु परिवर्तन हमारे अंदर कितना हुआ, ये बाबा जानना चाहता है। आज भी बाबा यही कहते हैं कि जो मेरी आश है वो आश पूरी कब होगी, कब डेट फिक्स करोगे कि तुम संपन्न संपूर्ण बन जाओगे। बाबा प्रतिदिन हम बच्चों को ज्ञान के अनमोल रतन देते हैं, खजाने दे रहे हैं। ये खजाने कोई रुपया पैसा नहीं है, लेकिन ये खजाने हैं ज्ञान, गुण, संकल्प, शक्तियां, ये सब हमारे खजाने हैं जो हमारे जीवन को भरपूर कर रहा है। रुपया पैसा थोड़े समय के लिए भरपूर करेगा, लेकिन सदा काल के लिए नहीं करेगा। आज कोई कहता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, कल जब वो रिटायर हो जाता है, या वो अपने सिर से नीचे उतर जाता है, या उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब उसका वो रुपया पैसा कहाँ जाता है। और वो बच्चे बड़े होकर के बाप को गुलाम बना देते हैं, या बाप को घर से निकाल देते हैं, तो उसका वो पैसे कौड़ी का जो वो कल तक बोल रहा था मेरे पास है, वो हुआ। लेकिन ये जो ज्ञान रतन है, ये हमारे पास सदा रहेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। लेकिन हमारे जीवन का परिवर्तन, हम अगर इस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमें लौटकर वो पुरानी बातों में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि हम कई रस्म रिवाज कलयुगी अपना लेते हैं, कई जगह हम देखते हैं लोग अपने घर में रिश्ते नातों में जाते हैं, और वहां जाकर के जो भी उनका क्रियाकर्म होता है, चाहे शादी हो, चाहे और कोई भी कार्यक्रम हो, वहां जाकर कलयुगी ड्रेस पहनना, कलयुगी चाल चलन से नृत्य करना आदि आदि, तो ये ऐसा लगता है जैसे ज्ञान में बहुत अंदर तक नहीं पहुंचे हैं। हम अगर उस रास्ता को छोड़ चुके हैं, तो उस रास्ते में हमें वापस नहीं जाना चाहिए, और वहां फिर बाबा की बदनामी होती है। लोग कहेंगे ना, ज्ञान में चलते और देखो इन्होंने ऐसे ऐसे डांस किया। कई बार तो हम ऐसे कर्म में लिप्त भी हो जाते हैं कि चलो तुम्हारे ये काम नहीं हुआ तो मैं भी तुम्हारी तरफ से ये करा देता हूं, हेरा फेरी, कुछ इधर उधर के, कुछ उल्टा पुल्टा कार्य, मार पीट का कार्य, कुछ किसी के साथ दुश्मनी है, उसके अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ ऐसा कर्तव्य करना कई लोग करते हैं। बाबा के ज्ञान में आने के बाद कई इस प्रकार के बातें करते हैं जो ऐसा लगता है कि इसका ज्ञान कहाँ गया। जीवन का परिवर्तन, हम अगर देव बन रहे हैं तो फिर हम दानव तो नहीं बन सकते ना, कि बन जाएंगे। अगर हम बनते हैं मतलब हम ज्ञान में नहीं हैं, हम चल तो रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन बाबा को सही रीति से जाना नहीं, पहचाना नहीं, वो अनुभव नहीं किया। और अनुभव कहता है कि अगर हम जरा सा भी इधर के उधर होए, तो तुरंत हमारे जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं होंगी। हमें पता नहीं वो किस तरह की घटनाएं, लेकिन होंगी जरूर। हमें ऐसे कई प्रकार के किस्से सुनने को मिलते हैं कि ज्ञान में आने के बाद किसी के साथ मिल करके किसी और की बुराई की या किसी और को नीचा किया या उसको समाज से इससे उससे अलग कर दिया, तो बाद में पता पड़ता है कि उसके पास भी ऐसी बातें आई जो दूसरों ने उसके बारे में बहुत कुछ कहा और वो आज अपने आप को बहुत डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं। तो कई प्रकार की ऐसी बातें जीवन में आते हैं जिन्हें जानना पहचानना जरूरी है। छोटी छोटी बातों में हम देखते हैं बाबा के बच्चे बनकर के कभी आपस में बिजनेस की बातें करते हैं और आपस में अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। पार्टनर बनने के बाद एक दूसरे को मदद किया, थोड़े दिन चलने के बाद किसी की नियत थोड़ी डामाडोल हुई और उसने उसके पैसे को ऐंठना शुरू किया, जितना उसको देना था उतना नहीं दिया, अपने पास रख लिया। बाद में पता पड़ा तो उसने उसको बोलना शुरू किया, भाई तुम्हारे पास इतना है, तुमको देना तो चाहिए था। बाद विवाद शुरू हुआ, शुरू होते होते झगड़ा हुआ, फिर दोनों के दोनों ज्ञान से टूट गए। तो इस प्रकार की बातें हम कभी कभी करते हैं। बाबा के बच्चे सभी को बहुत प्यार से चलना है, लेकिन बाबा जैसे कहते आपस में नहीं जोड़ने का। आपस में कैसे जोड़ो, जो हम एक दूसरे से छूटे भी रहे लेकिन जुड़े भी रहे। जुड़े कैसे रहे कि हम सब बाबा के बच्चे हैं, हम सब मिलकर के सेवा करेंगे, सेवा के लिए हम सब एक होंगे, लेकिन उसके बाद हम आपस में नहीं जुड़े हैं। आपस में जुड़ जाएं तो वहां बाबा बीच में से अलग हो जाता है, क्योंकि आपस में रिश्ता जुड़ता है और आपस में लेन देन शुरू होता है। और ये लेन देन हमको कहां से कहां ले जाती है, इसीलिए। और वहां हमारा हिसाब किताब भी बनता है। जब यहां बाबा ने कहा कि तुम्हारा तो सिर्फ एक शिव बाबा ही है, दूसरा ना कोई, और हमने भी कहा हाँ मेरा तो एक शिव बाबा है, दूसरा कोई नहीं, फिर हमारा दूसरे के साथ तो जोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है ना। हम सब एक हैं, लेकिन बीच में बाबा है। बाबा जैसा कहे, बाबा जैसा बोले, वैसा हम सब एक होकर के करें, ना कि हम आपको बोले आप हमें बोलो हम दो एक हैं, ऐसा नहीं। तो ज्ञान वहां वहां लागू होता है जहां हम ऐसी बातों में आ जाते हैं, वहां ऐसा लगता है इसके ज्ञान की पराकाष्ठा कहां। अगर ऐसा करते हैं तो दूसरे बोलते हैं कि भाई ये ज्ञानी है, ज्ञानी होकर ऐसा कैसे कर लिया, इसने झगड़े भी कर लिए और फिर दोनों अलग भी हो गए, बाबा से भी छूट गए, ज्ञान से भी अलग हो गए। तो हम बच्चों को बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो हमें एक होकर चलना है। एकता हमारा विशेष जो हमारा पैगाम है, हम सब एक है, एक ही रीति से हम चलते हैं, एक ही रीति से बोलते हैं, एक ही रीति से करते हैं, लेकिन बीच में बाबा है। बाबा ने बोला तो हमने सबने किया, लेकिन हमने बोला आपने किया ऐसा नहीं है। ये मेरा तेरा बीच में से अलग हो जाना चाहिए। तो ज्ञान की पराकाष्ठा है कि हम एक से जुड़े और एक के हिसाब से ही चलें, और एक ने जो कहा उस हिसाब से चले, क्योंकि हमें जाना है नई दुनिया में, हमें पुरानी दुनिया में नहीं जाना है। नई दुनिया के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में अनवरत परिवर्तन होता जाए। जितना जितना हम बदलते जाएंगे उतना उतना हमारे अंदर खुशी बढ़ती जाएगी। और हम परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, बाबा के कहे हुए बातों से, न कि किसी और से। और कहने वाला कौन, ऊंचते ऊंच भगवान, जिसने ये बेड़ा उठाया कि मुझे नई दुनिया बनानी है जहां सभी सुखी होंगे, सभी संपन्न होंगे और हमारी संपन्नता है हमारी धारणा है। जितना जितना हम धारण करते जाएंगे उतना हम संपन्न होते जाएंगे। हमारी संपन्नता हमारी धारणाओं से पता पड़ेगा और ये हमें कहाँ ले जा रहा है, अंत की ओर। आप सोचो अंत का जब समय आएगा तो अंत समय जो भी बातें हमारे सामने आए वो हमें ही झेलना होगा, हमें ही उस अंतिम समय को क्रॉस करना होगा। उस समय हमारा कोई सगा संबंधी नहीं होगा, वहां कोई हमारा दोस्त नहीं होगा, वहां और कोई भी नहीं होगा, ना धन दौलत होगा, वहां हमें स्वयं को ही उस बात को क्रॉस करना होगा। और स्वयं कब क्रॉस कर पाएंगे, जब स्वयं संपन्न होंगे। संपन्नता एक बाबा की याद से ही होगी, एक बाबा की याद और एक बाबा की श्रीमत, जो बाबा ने कहा। अगर ये बातें हमें अनवरत याद रहे तो ही हम क्रॉस कर जाएंगे, और नहीं तो अंतिम घड़ी में हम सोचते रहें, हम किसी को बुलाना चाहें तो वो बुला पाएंगे उस समय? अंतिम समय क्या हमारा फोन काम करेगा? ये जो फोन है, मोबाइल जो देखते हो, ये तो आज का इन्वेंशन है, पहले जमाने में तो ये था भी नहीं। और बाबा हमें उस लायक बना रहे हैं, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा तुम इतने संपन्न होंगे कि तुम्हारे ऊपर कोई आंच तक नहीं आएगी। ऐसी संपन्नता, और ऐसी संपन्नता तो हमें एकमात्र ज्ञान और योग से ही होगा ना। हमें बाबा की वो बातें याद रहे उस समय, अंतिम समय बाबा की याद रहे, बाबा से वो प्यार, बाबा से वो संबंध, ये सारा याद रहे। न कि मुझे याद आए घर द्वार जमीन जायदाद यार दोस्त पैसे कौड़ी, ये सब हमको रास्ता नहीं बताएगा। रास्ता दिखाने वाला एक बाबा ही होगा। उस समय मैं और मेरा बाबा, तभी हम क्रॉस हो सकेंगे, उस अंतिम समय को हम पार कर पाएंगे, क्योंकि उस समय हमारा कोई भी नहीं होगा। और हमें आज भी हमारे सामने कोई बात आती है तो वो उस समय तो यही लगता है ना, हम इस बात को क्रॉस कर जाएं। और इसको करने में हमें एक बाबा ही सहारा दे सकता है, एक बाबा ही साथ दे सकता है, बाकी कोई व्यक्ति नहीं देगा, कोई और दे भी नहीं सकता। देगा भी तो क्षणिक के लिए देगा, थोड़े समय के लिए दे सकता है, लेकिन हमें बिल्कुल क्रॉस करा दे, हमें पार लगा दे और हमारे ऊपर आंच भी ना आए, वो काम एक बाबा का ही है, वो ही कर सकता है। और हमारा पुण्य कर्म, हम बाबा का बच्चा बनने के बाद कदम कदम पर अगर श्रेष्ठ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, कमाई करते हैं, तो ये पुण्य कर्म भी हमारा साथ देगा। इसलिए बाबा का बनने के बाद हमें अपने हर चाल चलन पर विशेष ध्यान रखना है। हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, जो हमारा पहले कलियुगी था, वो बिल्कुल बदल जाना चाहिए, क्योंकि बाबा का बनने के बाद हमारे अंदर दैवी स्वभाव आए, दैवी क्वालिटीज जाग उठे। ये सब चीजें हमारे पास होंगी तो हम बढ़ते जाएंगे, हमारा जीवन खुशी से भरपूर रहेगा, किसी भी बात में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो देखती हूँ आज जब बाबा के बन गए, बाबा का बनने के पहले अनेक बातों में विघ्न था, परेशानियां थी, लेकिन जैसे ही बाबा का बनी उसके बाद से कुछ भी बातों में रिंचक भी परेशानी नहीं आई। आता है, बातें तो आती है, बातें अपनी जगह है, वो आएगी, लेकिन बात क्रॉस हो जाती है। थोड़ा सा सोचते हैं, बाबा बाबा करते हैं और बाबा काम पूरा करता है, इधर उधर नहीं करते हैं, या कोई और प्रकार से उन बातों को मिटाने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन बाबा की याद, बाबा का साथ वो काम पूरा कर देता है। और जो काम करते हैं उसमें खुद का भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण ये सोच के रखते हैं, किसी और का नुकसान नहीं हो जाए। भाई फलाना काम हो रहा है उसमें नुकसान नहीं, उसका भला हो, वो भरपूर हो जाए, वो खुश हो जाए। हमेशा हर कार्य करने के पहले ये देखते हैं कि किसी को कष्ट तो नहीं हुआ, किसी को दुख तो नहीं हुआ, मेरे स्वभाव से, मेरे व्यवहार से, मेरे बोली से किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचा। क्योंकि हम सब कलयुग में यही करते थे, कष्ट बहुत दिया लोगों को, कांटा जैसे चुभे, लेकिन बाबा का बनने के बाद हर एक को सुख दिया, तो ये पुण्य की कमाई, और ये कमाई अंतिम समय हमारा साथ देती जाएगी। तो हमें अंत समय की तैयारी भी करनी है, हमें नई दुनिया में जाना है, पुरानी दुनिया को दिल से, मन से, चित से भूल जाना है। पुरानी दुनिया के जो लोग हैं उन्हें भी हम इसी दृष्टि से देखें कि ये भी अगली दुनिया में चले, इनका भी कल्याण हो, इनका भी भला हो, सारा संसार साथ चले। हमारी तो ये आशा है सारा संसार साथ चले, लेकिन ड्रामा अनुसार चलेगा तो उतना ही जितने को जाना है। लेकिन हमारी भावना ये रहे बेहद की, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सब सुखी हो, सब संपन्न हो। तो ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वो ये है कि मैं क्या बनती जा रही हूँ, मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज आती जा रही है, मैं बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करूँ, मेरा जीवन कैसा बन जाए, इन सब बातों को सामने रखते हुए मैं अपने आप को सुधारती जाऊं। बाबा की श्रीमत अनुसार मैं अपने आप को सुधारती जाऊं, जिससे लोगों में ये आए कि इनका जीवन बदल चुका है, कोई भी देखे उनको ये महसूस हो अरे ये तो देवी है, ये तो देवता है, ऐसा महसूस होने लगे, हम सबके अंदर ये चीज आने वाली है। बाबा चाहता है अभी से आ जाए, लोगों को मालूम पड़ जाए, होगा तो पीछे तक, लेकिन हमारा जो पुरुषार्थ वो अभी से। और हम सब जब ऐसे संपन्न बन जाएंगे तो सारी दुनिया में देवी देवताएं प्रत्यक्ष हो जाएंगे, विनाश का नगाड़ा बजेगा और चारों ओर परिवर्तन प्रत्यक्ष दिखेगा। तो इसीलिए हम सबको अब तैयार होना है उस नई दुनिया के लिए इस ज्ञान से। देखो ये जो पढ़ाई है अनमोल पढ़ाई है, ये पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। कौन सा दिन बाबा कौन सी बातें बोल देगा और कौन सी बात हमें बिल्कुल बदल देगा एक झटके में, ये हमें ही नहीं पता है। इसीलिए मिस किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। अगर मिस होती है तो उस पढ़ाई को विशेष ध्यान देना है कि आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा। बाबा मुरली के माध्यम से हम सब बच्चों को भरपूर करता जा रहा है और इतना भर दिया है कि वो निकल नहीं सकता। निकलेगा? आप लोग क्या समझते हो कि हम वापस वैसे ही बन सकते हैं जैसे हम पहले थे, वही उल्टा सीधा खाना पीना चाल चलन? हम नहीं हो सकते, हम बहुत बढ़ चुके हैं, इसीलिए बढ़ते ही रहना है। हमें पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाबा तो कितनी बातें हम बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि बच्चे अब से इन बातों को छोड़ दो। बाबा कहते हैं ना कि सर्विस इतनी बढ़ती जा रही है, बच्चियां खड़ी हो जाएं, सिर्फ बच्चियां खड़ी हो जाएं। ये बाबा की बनती नहीं, मोह छोड़ती नहीं। बाबा तो स्वर्ग बनाने आया, बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया, पर बच्चे इतना साथ देते नहीं। तो हम सबको जानकर पहचानकर बाबा जैसा है, जो है, जैसा है, मैं कैसी हूँ, इन सब बातों को अच्छी तरह से जानकर बाबा का बन जाना है और बन करके वैसे ही चलना है जैसा बाबा चाहते हैं। तो ही हम इस ज्ञान को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष कर सकेंगे और दुनिया को भी ये मालूम पड़ेगा कि ऐसा हम सबको बनना चाहिए। ठीक है ना? ओम शांति।